ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा आविर्भाव दिवस है। यद्यपि गर्ग संगीत संहिता में यह बतलाया गया है कि बलदेव छठ जन्माष्टमी के बाद में अमावस्या आई, अमावस्या के बाद में जो छठ आएगी उस छठ के दिन में बलदेव प्रभु जी का आविर्भाव होता है, ये गर्ग संहिता में लिखा गया है। ये कल्पांतर में है, इसको झूठा नहीं कहा जाएगा, सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। ये कल्प भेद हरि कथा सुहावा, कल्प के भेद से ऐसा माना जाएगा। किंतु जी गोस्वामी ने विचार किया या हमारे गोस्वामी ने विचार किया, यदि बलदेव जी कृष्ण से वो अष्टमी के बाद में आठ से पूर्णिमा अमावस्या सात दिन ये और छः दिन 13 दिन बड़े हैं, अरे सुनो हम जो कहते हैं उसको समझो, अपना दिमाग मत लड़ाओ। कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ और बलदेव प्रभु जी का जन्म उसके बाद वाले छठ को हुआ, तो अमावस्या हुआ अष्टमी से, अमावस्या हो गया 7 दिन और उसके बाद में 6 दिन, 13 दिन हुआ ना। तो बलदेव प्रभु जी 13 दिन कृष्ण से छोटे हो जाते हैं, किंतु हैं बड़े, सभी जगह लिखा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ष में से 13 दिन कम बलदेव प्रभु जी बड़े हैं, अर्थात 11 महीने 17 दिन ये कृष्ण से बड़े हुए। 11 महीने माने 12 महीने में एक वर्ष में लड़का चलने फिरने लगता है, तो एक वर्ष तक ये क्या कर रहे थे बलदेव? इनका जन्म भी गोकुल में ही हुआ रोहिणी के गर्भ से, तो ये एक वर्ष तक करीब करीब 10 दिन 11 दिन 12 दिन 17 दिन ये यदि इतने दिन बड़े हैं, 11 महीना कितना दिन, तो बलदेव प्रभु जी इतने दिन में चलने लगे होंगे, कुछ खाना भी सीख लिया होगा, क्योंकि 6-7 महीने के बाद में 8 महीने के बाद में बच्चे को अन्नप्राशन हो जाता है, तो वो खाने भी लगा। तो ये जो भागवत में लिखा गया है ये एक ही साथ में रिंगन कर रहे हैं, अभी चल नहीं सकते और 11 महीने में तो बच्चे चलने लगते हैं, तो ये एक साथ में रिंगन आरंभ किया, एक साथ में नामकरण हुआ। नामकरण कितने दिन के बाद में होता है? 8 महीने के बाद में भी होता है, इसके बाद में और कुछ भी सब नियम है। तो बलदेव प्रभु जी का एक बरस और कृष्ण के साथ और थोड़ा सा लगा दो, तो ये इतना दिन तक नामकरण नहीं हुआ, खाए पिए भी नहीं, अन्नप्राशन भी नहीं हुआ, खेले कूदे नहीं, तो कहाँ थे? किंतु गोकुल में ही थे। इसलिए जीव गोस्वामी ने ये विचार किया, कृष्ण का जन्म अष्टमी को होता है, इसलिए उसके पहले पूर्णिमा जो आती है पूर्णिमा के दिन में इनका आविर्भाव, तब वो बलदेव प्रभु जी कृष्ण से 8 दिन बड़े होते हैं। 8 दिन तक वो आंख खोले नहीं, और उनको छिपा करके रखा गया, जैसे कंस को पता न चले कि वसुदेव के रोहिणी जी से कोई पुत्र हुआ है, नहीं तो वो शंका करेगा और मारने की चेष्टा करेगा, इसलिए उसको गुप्त रखा गया। कृष्ण का जन्म जब हुआ और पलने पर जबकि उनको पढ़ाया गया तो उस बच्चे को भी पलने में पढ़ाया गया। नामकरण पहले हुआ, दोनों माताएं अपने बेटे को लेकर के गौशाला में गई, गर्गाचार्य आए और उनका नामकरण हुआ, एक ही साथ में नामकरण हुआ, ये कोई असंगति नहीं है। कृष्ण मान लिया जैसे कुछ बड़े हो गए हैं, 8-10 दिन के हो गए हैं या 1 महीने के हो गए, बलदेव जी 1 महीना 8 दिन के हो गए, अब वो दोनों का एक साथ में गौशाला में नामकरण हुआ। गर्गाचार्य ने भी प्रकाश रूप में नहीं बतलाया, किंतु वो जानते हैं, भगवत तत्व जानने वाले हैं और भक्त हैं, इसलिए जानते हैं कि ये रोहिणी के पुत्र हैं और ये पहले थे देवकी के गर्भ में, ये जानते हैं, इसलिए उनका नाम एक राम राम रखा बलराम, और एक रखा बलदेव, और एक नाम शंकरसन भी रखा। इसमें विशेष एक यही बात है, एक द्वारका के बलदेव जी हैं जिनको मूल शंकरसन कहा जाता है, और एक वृंदावन वाले रोहिणी के पुत्र बलदेव जी, ये मूल शंकरसन नहीं है, मूल शंकरसन द्वारका वाले हैं, और वसुदेव जी वासुदेव शंकरसन प्रद्युम्न अनुरूप, ये मूल चतुर्व्यूह है। जैसे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ब्रज को छोड़ करके नहीं जाते, बलदेव प्रभु भी ब्रज को छोड़ करके नहीं जाते, देवकी के गर्भ में जो आए बलदेव प्रभु वो ऐश्वर्यपूर्ण वासुदेव थे, वो ऐश्वर्य युक्त वाले हैं, और उनके मूल अंशी जो हैं ये बलदेव प्रभु जी वृंदावन वाले हैं। जब वो वहाँ आए तो जोग माया को कृष्ण ने कह रखा था, उनको आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में रख दिया। 3 महीने की गर्भवती रोहिणी जी आई थी, और उसी समय में देवकी भी गर्भवती है। कुछ दिनों के बाद में 8 महीने के बाद में या 6 महीने के बाद में यशोदा जी को भी गर्भ हुआ, और उसी समय में बलदेव प्रभु जी को देवकी के गर्भ से लेकर के इनके गर्भ में आकर्षण किया गया। इनके गर्भ में तो गर्भ बच्चा था ही, और वो आकर के इनमें मिल करके ये दोनों एक हो गए। जैसे चतुर्भुज कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन में मिल करके एक हो गए, ऐसे वो बलदेव प्रभु जी अपने अंश में मिल करके एक हो गए। द्वारका और मथुरा की जो लीला हुई वो वासुदेव बलदेव जी ने किया, अब ब्रज में जो हुआ वो रोहिणी रोहिणी नंदन का। इसलिए जी गोस्वामी ने विचार करके ये बतलाया, पूर्णिमा के दिन ही जैसे पूर्ण चंद्र उदित होती है उदित होता है, ऐसे बलदेव जी भी पूर्ण रूप में उदित हुए। तब से हम लोगों के संप्रदाय में पूर्णिमा को ही बलदेव प्रभु जी का आविर्भाव दिवस माना जाता है। ये तत्वतः कौन है बलदेव प्रभु? सच्चिदानंद कृष्ण एक हैं, सच्चिदानंद, वही सच्चिदानंद कृष्ण से उनमें जो सत है वो सत तत्व अर्थात संधिनी का जो अधिष्ठात्री देव है वो कृष्ण ही बलदेव के प्रभु के रूप में प्रकट हुए और उनका आनंद अंश जो है वो राधा जी के रूप में प्रकट हुए और ये तीनों मिलकर के सच्चिदानंद है। किंतु कृष्ण का एक एक गुण एक एक अवतार ले सकता है, इसलिए उनका सत अंश संधिनी के अधिष्ठात्री के रूप में बलदेव कृष्ण से अलग नहीं है। जैसे राधा जी कृष्ण से अलग नहीं है, ये भी उनसे अलग नहीं है, तीनों मिलकर के एक और एक से तीन, ये नित्य तत्व है। अब ये संधनी से सत्ता होती है, बलदेव प्रभु जी से अनंत कोटि जीव, उसके पहले बैकुंठ और गोलोक और वृंदावन में जितने भी विग्रह हैं जिनकी सत्ता है, जैसे कृष्ण के रूप की सत्ता बलदेव जी की, जितने ब्रजवासी हैं स्थावर और जंगम, वहाँ के वृक्ष लता पृथ्वी जो कुछ वहाँ है सब संधिनी शक्ति का विलास है, अर्थात बलदेव प्रभु जी का है। अब ये संधिनी शक्ति कहाँ से आई, समस्त शक्तियाँ कहाँ से निकलती हैं, उद्गम स्थान स्वरूप शक्ति राधा जी हैं, तो बलदेव जी में भी देखो जो हुआ गई। इसलिए जितना जो कुछ वैभव वहाँ पर दिख पड़ता है वो लोग बैकुंठ में, इसके बाद में बैकुंठ में, इसके बाद में हम लोगों ने ये जो जितना बतलाया है भूर्भुव स्वः मजन तप सत्य तल तलातल पाताल रासातल अष्ट आवरण, और उसके बाद में जितनी भी सत्ताएँ देखती हैं ये सब संधिनी शक्ति के जो मूल बलदेव प्रभु जी हैं, इनसे सब प्रकाश, यहाँ तक कि महासंकर्षण गर्भोदशाई क्षीरोदशाई गर्भोदशाई कर्णादशाई क्षीरोदशाई गर्भोदशाई परमात्म तत्व इत्यादि सब कुछ निकल गए। यहाँ तक कि जीव तत्व भी यहाँ तक निकलने की बात कही गई है वो सब इन्हीं से निकले, इसलिए जैव धर्म में स्थूल रूप में बतलाया गया समझाने के लिए हमको। जीव तत्व कभी निकला है ऐसी बात नहीं, इसको चीज को समझो, जो अभी नहीं प्रवेश करते हैं तत्व में उनके लिए ये कहा गया। कृष्णा 5000 वर्ष पहले इस जगत में आए, उसके पहले जगत के लोग समझते हैं कि कृष्ण 5000 वर्ष पहले कृष्ण नहीं थे, किंतु थे कि नहीं, राधा जी भी थी, रामचंद्र जी की भी लीला थी, इस जगत में 5000 वर्ष पहले कृष्ण की लीला आविर्भूत हुई, उसके पहले क्या था, था ही नहीं था। स्थूलवादियों के लिए कहा, इसलिए स्थूलवादी कहते हैं कि पहले राम हुए न कृष्ण हुए, तो पहले राम हुए इसलिए हरे राम होगा, इसके बाद में कृष्ण कृष्ण होगा, ऐसा नहीं, वो नित्य ही प्रकाशित है, उसमें आगे पीछे का कोई प्रश्न नहीं, इसलिए जीव कभी प्रकट हुआ यह गलत बात। किंतु हम लोग शाखा चंद्र न्याय से हमारे आचार्यों ने देखा जैसे ऐसा नहीं करने से उनके समझ में नहीं आएगा, इसलिए तटस्था शक्ति और वहाँ से कर्णाब्दिशाई विष्णु के द्वारा जीव प्रकट हुए, कुछ मुक्त और कुछ ऐसा कहा जाता। किंतु अब इसको इस रूप में थोड़ा सा और आगे जाने के बाद में समझो, इसके बाद में फिर धारणा बदल जाएगी, जब मुक्त हम हो जाएंगे यथार्थ स्थिति को जाएंगे ना, तब यथार्थ बातें हम लोग समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे, और जब लीला में प्रवेश कर जाएंगे तो ये सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, ये सब कुछ नहीं रहेगा। जब बलदेव जी से ये जीव हुए कि कहाँ से क्या क्या हुआ, जैसे अभी हम लोग हैं ना, अभी समझ कुछ हम लोग समझने की चेष्टा नहीं करते, वैसे नादान अज्ञानी बन जाएंगे, उस समय ये सब विचार नहीं करते, नहीं तो लीला में प्रवेश ही नहीं, उस समय में लीला में जब प्रवेश होगा ना तो ऐसा नहीं समझेंगे ये कृष्ण से बलदेव जी पैदा हुए, वहाँ पर ये समझेंगे ये रोहिणी के पुत्र हैं, और कृष्ण से केवल 8 दिन बड़े हैं, भैया हैं, बस यही लीला में प्रवेश हुए हैं। वो तत्व ज्ञान इत्यादि वहाँ पर सब भूल जाएगा। जब इस जगत में आएगा जीवों को बतलाना होगा, आचार्य के रूप में ये सब बतलाएगा। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये बतलाया, मूल गोलोक वृंदावन में बलदेव प्रभु जी से ऐसे जीव प्रकाशित होते हैं जो कि नित्य मुक्त हैं और कृष्ण की वृंदावन में सब प्रकार से सेवा करते हैं बलदेव जी के काय। दूसरा, बैकुंठ में या द्वारका में समझो, जो द्वारकावासी को भी वैसे ही ले लो, ये सब बलदेव प्रभु जी से प्रकाशित होकर के उनकी सेवा करते
हैं।
मूल संकर्षण बने बलदेव प्रभु जी से, सब लोग जो कुछ बने हैं वही ना बलदेव प्रभु जी, इसलिए मूल संकर्षण द्वारका में हुए, तो अब उनको मान लो कि वहां से प्रकाशित हुए। और महासंकर्षण से बैकुंठ में, और कर्णाब्धि साई से तटस्थ वाले, किंतु सबको ले लो बलदेव प्रभु जी से ही, क्योंकि मूल में तो वही हैं, इसका तिकता है नहीं। इसलिए कुछ जीव हुए हैं जो वहाँ पर सेवा कर रहे हैं, कुछ मने अनंत वहाँ पर दास्य सख्य बात्सल्य इत्यादि जितने हैं सब उनसे ही ले। विशेष विचार करके जब हम देखेंगे ने? तब हम विचार करेंगे जो बलदेव प्रभु जी में जो संधिनी जी हैं उनका भी मूल राधा जी हैं, इसलिए श्रृंगार रस वाले जितने जीव हैं वो राधा जी के काल, उसमें कोई सिद्धांत में भी गड़बड़ी नहीं है, वही संधिनी से ही हुआ और उसके मूल प्रकाशक हैं। इसलिए ये दो, एक राधा जी से और एक बलदेव, किंतु दोनों एक ही चीज है, अंतर नहीं हुआ, शक्ति शक्तिमान का केवल नामांतर है। अब कर्णाब्धि साई के यहाँ ऐसा बतलाया गया है, जो जी उस स्थान से परलोक की तरफ ने देखा वो उधर में खींच गए, और जो जी देखा संसार की तरफ में संसार में, तो उसमें विविध प्रकार के ये सब कर्म देखे जाते हैं तारतम्य, कोई मनुष्य कोई गधा कोई घोड़ा कोई वृक्ष कोई नदी कोई कुछ क्यों हुआ, देखने के तारतम्य से जिन लोगों ने जिस दृष्टि से देखा, जिस भावना से देखा, जितनी जिनमें अज्ञानता थी बहिर्मुखता थी, उसी के अनुरूप में कोई वृक्ष कोई लता कोई नदी कोई पशु कोई पक्षी कोई मनुष्य कोई कुछ, ये सब तारतम्य। ये तारतम्य क्यों हुआ, यही जीव की स्वतंत्रता है। नित्य है ना गर्दभार सूर्य भी नित्य है, कृष्ण का धोबी, कृष्ण के धोबी को गधा होगा कि नहीं, अब विश्वभानु महाराज की धोबी होगा कि नहीं, तो वो कपड़े कैसे ले जाएगा। जो कुछ है वो सब प्रेज
की गधा तो अच्छा है।
हाँ, तो यहाँ का गधा यदि भजन साधन करेगा तो वहाँ पर भी हो सकता है। तुम गधा यदि बनना चाहते वहाँ का तो खूब आसानी से काम है। हाँ, तो इसमें हम लोग समय लगा देंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। बलदेव जी को अखंड गुरु तत्व कहलाते हैं, बलदेव जी को अखंड गुरु तत्व कहते हैं। गुरु तत्व को भी दो बतलाया गया, एक श्रीमती राधिका जी को भी गुरु तत्व बतलाया गया और एक बतलाया गया बलदेव प्रभु जी को, किंतु अखंड गुरु तत्व कृष्ण ही है। अखंड बलदेव प्रभु जी से वो बात किया जब उसका चैतन्य चरितामृत ढूंढ करके हमको बतलाना,
नहीं बता, काल
काल के दिखा। बलदेव प्रभु जी से या नित्यानंद प्रभु जी से दास्य सख्य और वात्सल्य का आधार नंद बाबा इत्यादि, और राधिका जी से श्रृंगार रस वाला जी, किंतु दोनों मिलकर के एक तत्व ही बतलाया, उसी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। क्यों? उमा रमा लक्ष्मा लक्ष्मी सबे अवतार
राधा अवतार सबे,
ये बात ठीक है ना? ये जितनी भी शक्ति तत्व है सब उनके मूल है राधा जी, तो यशोदा जी कैसे छूट जाएंगे? इसलिए उनमें जो वात्सल्य रस है वही वात्सल्य रस का जो स्त्री का भाव वो उन्हीं से, इसलिए सखी तत्व जितना है मधुर भाव वाले वो सब के उद्गम स्थान श्रीमती राधिका। गुरु तत्व के रूप में एक तत्व संकर्षण से आता है और एक आता है वही ब्रह्मा कृष्ण और ब्रह्मा इत्यादि के तरफ से। भागवत काज की जो गुरु परंपरा है, एक में ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से नारद व्यास सूत सूत ऐसे एक आता है, और दूसरा कैसे आया?
संकर्षण
से आया नर नारायण, नारायण ऋषि, और उससे वो तो पीछे उनके और आगे उनका नाम मुझे नहीं आ रहा, वो उसके बाद में मैत्रेय इत्यादि और उधर से एक आया, दो परंपरा है उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो एक के ये संकर्षण भी हैं, ये इनको महाभारत इत्यादि में हरिवंश में बतलाया गया है इनको, जो छोड़ दो, शेष के ये अवतार हैं, ये अनंत हैं। शेष कौन? संकर्षण कारण तोयसाई, संकर्षण माने दो संकर्षण, मूल और महा, ये दोनों को समझ लो, इन दोनों के भी मूल है बलदेव जी। संकर्षण कारण तोयसाई गर्भोदशाई च पयोधिशाई, और जो बाकी रह गया वो शेष, यही अंतिम तक, ये सब बलदेव प्रभु जी के प्रकाश अंश कला विकला, ये सब जीव तत्व भी या जीव शक्ति भी बलदेव प्रभु जी से ही है। तो शेष का अवतार इनको क्यों कहा गया है? और बतलाया गया है केश का अवतार, केशावतार, एक श्वेत केश और एक काला से, काला से कृष्ण और श्वेत से बलदेव। तो ऐसा मालूम होता है कि वो खिचड़ी पकी हुई आयु के कारणाप दिशाई हैं, तो वो बूढ़े भी हैं, इनका केश पका हुआ है। किसी भी भगवत तत्व में अवतार में कभी बूढ़ा नहीं होते हैं, कोई भी नहीं, 16 वर्ष जैसे सब समय समस्त अवतार लोग नवयुवक, चाहे रामचंद्र जी हो, कर्णाब दिशाई, गर्भोदशाई, जो कोई भी है, तो इनका बूढ़े कैसे हो गए? इसलिए कहा जी ऐसा नहीं, यह किस लिए बतलाया गया? ऐसा क्यों बतलाया गया? जिसलिए बतलाया गया, भागवत में ऐसा नहीं कहा गया, ये बतलाया गया जैसे ललिता जी और श्रीराम जी लड़ झगड़ करके एक दूसरे को अभिसंपात करके वो इस जगत में आए, प्रकट हुए, ऐसे ही यहाँ पर सब अवतार एक बतलाया गया है लोगों को एक धारणा करने के लिए, फिर गुरु वैष्णवों के साथ में संपर्क होने पर, दीक्षा शिक्षा होने पर, तत्व समझने पर वो देखेंगे जी वो बात ठीक नहीं, वो इस रूप में गौर और श्याम के रूप में उनका केश बतलाया। केश माने उनके भी जो मस्तक मणि हैं, उनके भी जो अंश हैं, कौन है?
कृष्ण
है। इसलिए हुआ कृष्ण और बलदेव जी उस कारण फिरोदसाई के भी उनके मूल अवतारी के अवतारी के अवतारी के वैसे मूल के मूल वो चले गए हैं तो ये कृष्ण है। इसलिए अपने मुकुटमणि में से अपना भी आराध्य हमारे ये दोनों हैं कौन कृष्ण से जो कृष्ण और बलदेव इस रूप में अवतार लेंगे ये कहा। किंतु लोगों ने समझा जी उन्होंने केस उखाड़ करके दे दिया और उनको एक श्वेत हो गए बलदेव जी और हो गए ऐसा नहीं पूज्य के रूप में दिखलाया इसलिए उन्होंने ये किया। हम देखते हैं राम की लीला में और कृष्ण की लीला में एक ही तरह का भाव। जब वो अपनी लीला का अंतर ध्यान करने लगे तो अयोध्या में दुर्वासा जी आए और राम से एकाग्र में मिलना चाहे। राम ने लक्ष्मण जी को पहरादार रख दिया, तुम किसी को आने मत देना, दुर्वासा जी से हमने प्रतिज्ञा की है यदि कोई आएगा तो उसको हम मृत्यु दंड देंगे, इसलिए किसी को आने मत देना, तुम भी मत आना। और इतने में दुर्वासा जी काल पुरुष आया था पहले, अब दुर्वासा जी आए, दोनों एक ही हैं। पहले काल पुरुष आया माने ये दुर्वासा जी ही काल पुरुष, और उसके बाद में खुद दुर्वासा जी, मैं अभी तुरंत मिलूंगा नहीं तो अभी संपा से सबको जला दूंगा। अब लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के पास में गए, जी अकेले ही मैं मरूंगा, सब क्यों मरे। रामचंद्र जी ने कहा तुम अब क्यों आ गए, थोड़ी देर सब्र रखते। उन्होंने ऐसी बातें उन्होंने कहा जो अयोध्या पुरवासी सबको राम और सीता सबको जला करके भस्म कर दूंगा, इसलिए मैं सोचे जैसे अब तो हमारी लीला ये समाप्त होने वाली है। इसके बाद में लक्ष्मण जी को कहा जब वो चले गए दुर्वासा, बोले जैसे अब मैं तुमको कैसे जीवन मारूं, मैं तो तुम्हारा बहुत ऋणी हूं, इसलिए मैं आजीवन के लिए तुमको त्याग कर देता हूं। जब त्याग ही कर देंगे तो मैं जीवित नहीं रह सकता। यमुना के किनारे गए और यमुना में स्नान करके और वहीं पर खड़े हो गए और उनका मस्तिष्क विदीर्ण हो गया।
सरयू नदी,
सरयू में, भाव से समझ लो, वहां पर निकला और एक सफेद सर्प निकला बहुत बड़ा उनके सिंह से और वो चला गया। कौन दिशा में चला? उत्तर दिशा में वो चला गया। ठीक इसी तरह से जबकि दोनों में युद्ध हुआ आपस में मुसल युद्ध, मौसल लीला में उसके पहले ही जब देखा जी सब मरने लगे परस्पर, तब बलदेव जी वो कौन कौन वो स्थान प्रभास समुद्र के किनारे बैठे और एक सर्प निकला एकदम सफेद बहुत बड़ा और समुद्र की तरफ में चला गया।
सर्प तो निकल गया,
वही शेष है ना,
सबके तो मूल है।
पृथ्वी को धारण करने वाले, पृथ्वी को नहीं इस ब्रह्मांड को धारण करते हैं शेष के रूप में और सब प्रकार से सेवा करते हैं, इसलिए उस रूप में वो पड़ गए। लोग कहते हैं कि वो शेष के अवतार थे इसलिए शेष हो गए, ऐसा नहीं, वो तो अलक्षित रूप में चले गए गोलोक वृंदावन में या द्वारका में ही कृष्ण की लीला में रह गए और उनको दिखलाया जब उनके अंश जो शेष हैं वो जगत में रह गए। उनकी लीला सब समय जगत में है, पृथ्वी को भूमंडल को ब्रह्मांड को वो अपने श्वास के आधार पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वो सबको स्थिर रखते हैं, इसलिए ये शेषावतार है। तो बलदेव प्रभु जी के मूल संकर्षण, महासंकर्षण, कर्णाधिशाही, गर्भोदशाही, शिरोदशाही और शेष, ये छ ऐसे वही पहले लक्ष्मण जी थे, पीछे से ये बलदेव प्रभु जी हुए हैं और यही फिर नित्यानंद स्वरूप के रूप में किसी न किसी रूप में जरूर ये रहेंगे समस्त लीलाओं में। नाम रखा गर्गाचार्य जी ने बलदेव, बल के अधिष्ठात्री, चीत बल के अधिष्ठात्री, और बलराम अत्यंत सुंदर, और शंकरसन तो नाम उनका ही है। ये सबसे पहले इनकी लीला प्रकाशित हुई धेनुकासुर का वध। ये गुरु तत्व हैं। भगवान को भूलना, भगवान की भक्तों की सेवा नहीं करना, ये मूर्खता गधे जैसा है। गधा कपटी नहीं होता, धूर्त नहीं होता, चलाक नहीं होता, मूर्ख होता है। और मूर्ख होकर के माने, मूर्ख माने कुछ समझता नहीं, इसलिए वो गधा कहलाता है। साधकों के हृदय में ये मूर्खता रहती है। कृष्ण का भजन नहीं करता, ये मूर्खता है। गुरुदेव सबसे पहले बलदेव प्रभु जी ही गुरु के रूप में प्रकाशित होकर के